آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو تاک راتوں اور نائٹس کے علاوہ بھی محنت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. یہی شوق ہمارا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کتنی تڑپ ہے، کتنا شوق ہے اس رات کو پانے کا، اس کا اجر پانے کا. کیونکہ دیکھیں، جو اس کو ویلیو کرتا ہوگا نا، جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہوگا، وہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان 10 راتوں میں نہ جا کے. ٹھیک ہے، 5 جو آڈ نائٹس ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ واقعی آڈ نائٹس آڈ ہیں یا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی چاند دیکھنے میں. تو یعنی ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، ہم کسی طرح کی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں سمجھتے کہ ہم اس رات سے محروم ہو جائیں، رسک نہیں لینا ہم نے. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے اقوال ہیں ان راتوں کے بارے میں، کہیں کسی کے کہیں 40 اقوال ہیں، کہیں اور کتنے اقوال ہیں کہ یہ فلاں رات ہے، یہ فلاں رات ہے، مطلب بے شمار قسم کے. تو اب اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم کیوں اس رات کو رسک میں ڈالیں، ہے نا، ہم کیوں ایسا کوئی چانس لیں کہ ہم سے مس ہو سکتی ہو. جو انشاءاللہ ان 10 راتوں میں جاگے گا، وہ یقین کر لے کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے الحمدللہ. جو 5 میں جاگے گا آڈ نائٹس میں، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کو ملی ہے کہ نہیں. اور جو صرف 27ویں کو جاگے گا، اس کا اور بھی کم چانس ہے. تو رسک فری اگر آپ رہنا چاہتے ہیں نا، اور آپ کو واقعی تڑپ ہے کہ مجھے یہ رات مل جائے، تو سستی نہ کیجیے گا. یہ ساری 10 راتیں، پتہ نہیں 10 ہوتی ہیں یا 9 ہوتی ہیں یا کیا، ان میں ہم نے انشاءاللہ جاگنا ہے اور ہم نے عبادت کرنی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، دعائیں، یہ چیز. اب تلاوت آپ قیام میں بھی کریں، قیام سے تھک گئے تو پھر بیٹھ کے تلاوت کر لیں، مگر یہ نہ کریے گا کہ ادھر ادھر گھومتے رہیں، کبھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کبھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی فون چیک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ راتیں جاگنے کا کمپٹیشن نہیں ہے کہ کون جاگ سکتا ہے، یہ کمپٹیشن نہیں ہے. وہ تو کئی سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ بھی جاگے میں اس وقت، کئی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں ہسپتالوں میں، ان کی جابز ہیں، وہ بھی جاگے میں اس وقت، کوئی اور لوگ جاگے میں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو جاگنے کا تو کمپٹیشن نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم جاگ کے کرتے کیا ہیں. اس لیے رات کو بھی یعنی ایسے گزاریں کہ وہ واقعی عبادت والی رات ہو، چٹ چیٹ والی رات نہ ہو، گپے مارنے والی رات نہ ہو. اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا کر لیں، سب کے ساتھ نہ بیٹھ جائیں. ظاہر ہے سب ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گپ شپ ہوگی. اکیلے بیٹھیں، دھیان اللہ کی طرف صرف لگائیں. ایک چیز جو بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے اس میں، کہ آپ آن لائن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تلاوت آپ کو مل جاتی ہے. جو بھی قاری آپ کو پسند ہیں آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کو ایسی ایموشنل بھی ریسٹیشنز مل جاتی ہیں، ایسی بھی مل جاتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت آوازیں ہیں، وہ دل کو نرم کرتی ہیں. پھر ایسی صورتوں کا انتخاب کریں جو صورتیں دل کو نرم کرنے والی ہیں، پھر ان کو ان آوازوں میں سنیں تو آپ کا اور دل، مثلاً سورہ قیامہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں وہ ہے، یا سورہ زمر ہے، تو مطلب ایسی صورتیں ہیں نا جس کے اندر ایسی کئی باتیں ہیں جو دل کو نرم کرتی ہیں. تو کئی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جس میں ساتھ ٹرانسلیشن بھی آتی ہے. तो इनसे फायदा उठाइए। आप जब ट्रांसलेशन नहीं आती तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, डायरेक्ट वो दिल पे असर करती हैं। उसके साथ साथ आप कारी के साथ साथ अपना कुरान खोल के आप भी पढ़ सकते हैं, नमाज में नहीं मतलब वैसे आप भी पढ़ सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो ये बहुत आपको फायदा देगी, ये भी आप करके देखिएगा। और बाज़ लोग सिर्फ दिन में कुरान पढ़ते हैं, रात में नहीं पढ़ते। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहि सलाम रात में आया करते थे, तो रात में वो दौर किया करते थे, और रात में फोकस करना ज़्यादा आसान होता है। दिन में बहुत सारे और काम हो जाते हैं, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, रात खामोशी की होती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को क़याम में 10 आयात पढ़ लेगा उसका नाम गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, और जो 100 आयतें पढ़ लेगा उसका नाम कानितीन में यानी इबादत गुजारों में लिख लिया जाता है। तो कम अज़ कम 100 आयात ज़रूर हर कोई पढ़ ले, इतना मुश्किल नहीं है काम ये। तो क़याम में 100 आयतें कर लें और इंशाल्लाह आप भी इबादत गुजारों में लिखे जाएंगे। इसी तरह सदका ज़रूर कीजिए। ये नहीं है कि सदका हमने इसलिए करना है सिर्फ कि हमें सवाब मिलेगा, सिर्फ ये इंटेंशन, क्योंकि कोई लोग कह सकते हैं ना कि मुझे तो नहीं चाहिए सवाब। तो एक हदीस में आपको सुनाती हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारे हाथ से सदका करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो हदीस क्या है, बड़ी यानी झंझोड़ देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन माल की कसरत वाले किल्लत वालों में होंगे, किल्लत को समझते हैं ना, जिनको कमी हो गई हो, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ने माल दिया है, खैर दिया है, और वो उसे अपने दाएं बाएं आगे पीछे खर्च कर रहा है और उसके से नेकी के काम कर रहा है। यानी क्या मतलब है इस हदीस का, कि ये जो माल की कसरत है ना, वो आखरत में नेकियों की कमी का बाइस बनेगी। अब क्या वजह है, इसलिए कि जब माल ज्यादा होता है ना, जरूरत से ज्यादा होता है, तो इसराफ होना शुरू हो जाता है। नित नए हम आइडियाज निकाल लेते हैं, अब ऐसे कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, चलो ये प्रोग्राम बना लेते हैं, फलानी चीज कर लेते, जिसके अंदर फजूल माल हम जाया करते हैं। अब जो है जो सही, तो अब कहीं ना कहीं तो खर्च करना है, तो इंसान और ही मशगलों में पड़ जाता है, और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास कम हो जाता है। दुनिया में मशगूलियत इसकी वजह से ज्यादा बढ़ जाती है ना। देखें, हम कोई डेकोरेशन करने में लग जाएंगे, कभी चीजों को कुछ बनाने में लग जाएंगे, कभी यानी फजूल हम मशागिल निकाल लेते हैं, फजूल आइडियाज निकाल लेते हैं, और माल को जाया करना शुरू हो जाते हैं, और एहसास भी नहीं होता हमें कि हमें ये अल्लाह ताला ने अमानत दी हुई है। तो माल की कसरत वाला जो है ना, ये कयामत के दिन नेकियों में किल्लत वाला हो जाएगा। या रब हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे। अपने लिए तो बहुत लोग खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कितने खर्च करते हैं। और हदीस में आता है माल की कसरत के वो उसी के लिए बेहतर है जो नेकी कमाने का जरिया बनाए इसको, बस, बाकी किसी के लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए सदका कीजिए, अपने हाथ से दीजिए। ये मुश्किल नहीं है। अब इस वक्त आप देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशंस मांग रही हैं इस वक्त डोनेशंस, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ इतनी जगह पे ज़रूरत है, अभी भी अगर कोई कहे हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ दें, तो ये फिर अपनी ना समझी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, और अभी ये रमज़ान की जाती जाती दिन और रातें हैं, इनमें बढ़ा लें अपने अजर को सदका करके, वरना ये ना हो कि हमारा ये पैसा हमारे लिए आखिरत में नेकियों में कमी का बाइस बन जाए, अल्लाह ना करे। चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को इससे कोई फायदा भी हो रहा है? अपना फीडबैक बताइएगा इंशाल्लाह। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं मैं अपनी दरसगाह की तरफ नहीं गया। दिन बहुत खूबसूरत था, आज मैंने जुहर की नमाज अदा की। और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। अभी मैं गाड़ी पार्क करके गेट के पास ही पहुंचा था कि एक उधेड़ उम्र औरत बाबा जी से उलझती भी नजर आ रही थी। यूं लगता था बुढ़िया का जहनी तवाज़ुन कुछ ज्यादा सही नहीं है। मैं करीब हुआ और सलाम किया। बुढ़िया ने मेरा जवाब देकर कहा, ए बेटा, जरा इनसे पूछो तो सही, सिकंदर आजम की कब्र कहाँ है? ये कहते इनको पता ही नहीं। अरे मैं उस सिकंदर का पूछ रही हूं जिसने दुनिया फतह की, जिसका डंका सारी दुनिया में बजता था, जिसका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, जिससे दुनिया कांपती थी, और ये कहते हैं मुझे नहीं पता। बाबा जी ने लंबी सांस खींची और मुझसे कहने लगे, बेटा मैं इस बीबी को क्या बताऊं कि यहां तो बड़े बड़े सिकंदर आए हैं, बड़े बड़े सरदार आए, बड़े बड़े मुशीर आए, बड़े बड़े वजीर आए, जिनके आगे हटो बच्चों का शोर हुआ करता था, जो बगैर गार्ड्स के निकलते नहीं थे, जो लाखों वोटों से इलेक्शन जीतते थे, जो रोजाना टेलीविजन की जीनत बनते थे, जिनके प्रोग्राम देखे बगैर लोगों को रात को नींद नहीं आती थी, और जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग लंबी कतारें बना के खड़े रहते थे और टिकट खर्च करके उनको देखने जाते थे। आज देखो, मुफ्त में भी इनको देखने कोई नहीं आ रहा। जिनकी गाड़ियां फूलों की पत्तियों से भर जाती थी जब वो घरों से निकलते थे, आज उनके लिए दुआएं करने वाला भी कोई नहीं है। कैसे बताऊं इस बीबी को कि यहां बड़े बड़े सिकंदर आए हैं, मगर सब फकीर हो गए हैं। यहां का सिकंदर भी फकीर है, और फकीर तो था ही फकीर। मैंने बाबा जी की बात सुन के सर झुकाया और खामोशी से एक तरफ को चल दिया। वाकई दुनिया के बादशाह भी यहां आकर फकीर ही तो हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग बेबस हैं यहां। ऊंची मसनदों पर बैठने वाले खाक तले हैं, और खाक में रुलने वाले तो पहले ही खाक में थे, तो फिर फर्क क्या पड़ा? क्यों फिर करोड़ों रुपए रखने वाले तकब्बुर से गर्दन अकड़ा के चलते हैं, और फकीर खुद को सबसे बदनसीब समझते हैं? क्यों बड़े बड़े करियर्स बनाने वाले अपनी बड़ाई के एहसास की वजह से आम आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करते, और आम लोग एहसासे कमतरी का शिकार ही रहते हैं? क्यों हसीन चेहरे वाले अपने हुसन के घमंड में किसी को खातिर में नहीं लाते, और आम चेहरे वाले उनको देख देख के आहें भरते रहते हैं? क्यों नौजवान फिर अपनी ताकत के नशे में हर वक्त बिफरे शेर की तरह होते हैं, और क्यों उधेड़ उम्र हर वक्त अपनी ढलती उम्र का रोना रोते रहते हैं? देखो तो सही, यहां सब बराबर हो गए। सिकंदर और गदागर बराबर हैं, हसीन शक्लें और आम शक्लें बराबर हो गई, बूढ़ा और जवान बराबर हो गया, अरबपति और फकीर बराबर हो गया। फिर हम कितनी भूल में जीते हैं। मैं तेजी से कब्रों से होता हुआ कब्रिस्तान के दूसरे किनारे की तरफ चला जा रहा था। चलते चलते एक कब्र देखी जो खुली भी थी। लगता है बाबा जी ने अभी अभी तैयार की है और कोई जनाजा आने वाला है। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसमें झांक के देखा। बहुत गहरा घड़ा था और चारों तरफ मट्टी के सिवा कुछ नहीं था। दिन के वक्त भी उसमें अंधेरा था, वीरानी थी, वहशत थी। मैं उसके किनारे पे खड़ा हो गया और उसका जायजा लेने लगा, तो वह कब्र मुझसे मुखातिब हुई, कहने लगी, मैं अंधेरों का घर हूं तो आमाल लेकर आना, मैं खुद रोशन हो जाऊंगी। मैं कीड़ों का घर हूं, नेकियों का सामान लेकर आना, मैं जन्नत का बाग बन जाऊंगी। मैं वहशत का घर हूं, कुरान साथ लेकर आना, मैं उनसियत वाली बन जाऊंगी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाह मेरी कब्र की वहशत में मुझे उनसियत अता फरमा देना। ये इंतहाई खौफनाक गड़ा था और उसको देखने से ही दिल कांप रहा था। मुझे इसके लिए सामान इकट्ठा करना है, वरना सामान तैयार किए बगैर इसमें आ गया तो ये मेरा क्या हाल करेगी। मैं अपने इस घर के लिए क्या तैयार करूं, फ्रिज खरीदूं, बेडरूम सेट ऑर्डर कर दूं, या एसी और बल्ब का इंतजाम कर लूं। और हाँ, टाइम पास करने के लिए क्यों ना कोई लेटेस्ट फोन बमा पैकेज के ले लूं। मेरी ये बात सुन के वो बोली, ना मेरे लिए तुझे किसी फ्रिज की जरूरत है, ना फोन की, ना नरम गद्दों की, ना बिजली के बल्ब की। मेरे पास आने के लिए नमाज लिया, कुरान लिया, सदका लिया, सूरह मुल्क लिया, रोज़ा लिया। तेरे ये आमाल मुझे तेरे ऊपर गालिब नहीं आने देंगे। चारों तरफ से तेरी हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतनी इनकी हिफाजत मजबूत होगी। नेकियां लेकर आना, वो खूबसूरत आदमी की शक्ल में तेरे पास खड़ी हो जाएंगी। तू दुनिया की 60-70 साल की जिंदगी के लिए पता नहीं क्या क्या सामान जमा करता है, और मेरे पास आने के लिए कुछ भी जमा नहीं कर रखा, जबकि मेरे पास तेरा कयाम कयामत तक के लिए होगा, जो ना जाने हजारों साल बाद आएगी या कब। तो इसके लिए कुछ बनाने की तुझे कोई फिक्र नहीं है। सुन, मुझसे ज्यादा घबराहट वाली कोई और जगह नहीं है। बड़े बड़ों को मैंने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, उनके कफन चीर के रख दिए, जोड़ों को अलग अलग कर दिया, उनके पेट फाड़ दिए। जुनेद, इंसान का दुनिया में कयाम बहुत थोड़ा है, मगर इस दुनिया का धोखा बहुत ज्यादा है। इसका जो आज इज्जत वाला है वो कल जलील होने वाला है, इसका दौलत वाला कल फकीर होने वाला है, इसका जवान कल बूढ़ा होने वाला है, और इसका जिंदा कल मर जाने वाला है। आज पूछ के देख तो सही इन मकीनों को, इन मकीनों से पूछ कि मैंने इनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया है। इनसे पूछ तो सही इन पे क्या गुजर रही है। वो मालदार जिनसे लोग हसद किया करते थे, वो मालदार भी यहां पड़े हैं, और उनसे हसद करने वाले भी यहीं, जिनको अपनी नरमो नाजुक तबीयत का बड़ा ख्याल हुआ करता था, जरा सी मक्खी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते थे। आज उनसे तो पूछ जरा कैसी गुजर रही है। वो बेगमात जो सारा दिन नौकरों पे रोब झाड़ती थी, उनसे पूछ तो सही आज उनका रोब दबदबा कहाँ गया। वो जो जायदादों के पीछे लड़ाइयां लड़ते थे, उनसे पूछ तो सही उनकी जायदादों में अब कौन रहने वाला है। ऐ जुनेद, दुनिया की आसाइशों से धोखा ना खा जाना। ये जल्द या बदेर छोड़ के तुझे मेरे पास ही आना है। अपनी आमद से पहले अपना सामान तैयार कर ले। ये दुनिया खूबसूरत ख्वाब की तरह है, इसकी लज्जत से धोखा ना खा जाना। ये ख्वाब बड़ी जल्दी टूट जाया करता है। अगर लोग मेरा अजाब देख लें तो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें। लिहाजा अल्लाह से दुआ किया कर कि तुझे अपनी पनाह में ले ले मेरे अजाब से। ये बातें सुन के मैं गोया पत्थर का बुत बन चुका था। कदम उठाने की भी अब मुझ में हिम्मत नहीं रही थी। मैं वहीं बैठ गया और देर तक बैठा रहा। वाकई ये जिंदगी इंसान को कितना बड़ा धोखा देती है। ये कितना हसीन ख्वाब लगती है, और जब इंसान जागता है तो पता चलता है कि असल हकीकत क्या थी। सारी जिंदगी इंसान गफलत में गुजार देता है, दिन भाग दौड़ में और रात को बेखबर होके सो जाने में। और इधर ये कब्र मुंह फाड़े इंतजार में बैठी होती है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान तू तो कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है और उसकी से मुलाकात करने वाला। मुझे यहाँ बैठे हुए ना जाने कितना वक्त गुजर गया। बाबा जी आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, बेटा यहाँ बैठे हो, इस कब्र के लिए एक जनाजा आ रहा है, जरा आओ तो सही, उसको कंधा दे दो। मैंने सर उठा के बाबा जी के पुरसकून चेहरे की तरफ देखा। कौन है? कहने लगे, सुना है कोई खातून थी, कार एक्सीडेंट हुआ और खत्म हो गई। मैंने दूर से लोगों को इस तरफ आते हुए देखा। वो जनाजा कंधे पर उठाए ला रहे थे। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और जनाजे को कंधा दिया। जनाजा लाकर इस कब्र के पास रख दिया गया और मैं कुछ पीछे हट के खड़ा हो गया और सोचने लगा, भला इस औरत ने कभी सोचा होगा कि आज के दिन, आज की तारीख में ये यहां पड़ी होगी। मैंने पास खड़े हुए आदमी से पूछा, जो कोई उनका दूर का अजीज लग रहा था, क्या हुआ था इनको? कहने लगा, बस क्या बताऊं, घर से खुद ड्राइव करके निकली हैं जॉब के लिए और ट्रक से गाड़ी टकराई और खत्म हो गई। मैं उसके मुख्तसर से जुमले से बात समझ गया था। उनके कुछ खानदान वाले कब्र से कुछ दूर हटके खड़े आंसू बहा रहे थे। उनमें एक नौजवान की मुझ पे नजर पड़ी तो शायद मेरी दाढ़ी देख के वो मेरी तरफ बढ़ा, मेरे करीब आकर कहने लगा, आप बता सकते हैं इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए? ये हमारी अम्मी है, हम चाह रहे थे इनके लिए कुछ पढ़ें, मगर ना तो जनाजे की नमाज में समझ आ रहा था क्या पढ़ें, ना यहाँ समझ आ रहा है, आप प्लीज हमें गाइड करें। मुझे उसकी बेचारगी पे तरस आया। 22-23 साल की उम्र हो गई थी, मगर इसको अभी तक कुछ नहीं पता था। मैंने कहा, आप दुआ कीजिए अपनी वालदा के लिए। वो झट से बोला, क्या दुआ करें, कोई खास दुआ है? मैंने कहा, आपको कोई दुआ भी नहीं आती तो सिर्फ ये दुआ कर दें, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे। उसने मशकूर नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, असल में इमाम साहब जनाजा पढ़ाने से पहले भी कुछ मुश्किल मुश्किल दुआएं बता रहे थे जो हमें नहीं समझ आ रही थी। ना हमको जनाजा पढ़ना आता था तो हम तो बस साथ शामिल हो गए, मगर इसके अलावा कुछ पढ़ नहीं सके। मामा की फ्रेंड से भी हमने पूछा, मगर वो भी कह रही थी कि उनको तो ये मौलवियों की बातें समझ ही नहीं आती, ये पता नहीं क्या इतने मुश्किल वर्ड्स बोलते हैं। देखे ना, दीन ऐसा मुश्किल तो नहीं है ना। मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया था कि वो दीन को कितना समझता है, और ये एहसास भी हुआ कि नेक लोगों का साथ भी कितना जरूरी है। आज इन खातून की दोस्तें कोई दीनदार औरतें होती तो इसके बच्चों को सही गाइड तो कर देती, इसके जनाजे में शामिल होकर इसके लिए दुआएं तो कर लेती, इसको कब्र में उतारने के बाद इसके लिए सदका तो करती, और फिर हमेशा इसको दुआओं में याद रखती। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो दोबारा कहने लगा, मैंने अपनी मॉम के लिए जबरदस्त फूलों की चादर ऑर्डर की भी है, बस अभी आती ही होगी। आई लव माई मॉम, ऑलवेज हमारी स्टडीज की बहुत फिक्र करती थी, हमारे करियर्स की। इतनी लविंग थी, हमें कभी कुछ नहीं कहती थी, कभी नींद से भी जगाती नहीं थी। हमें पता था कि हमारी मामा को खुशी होती है हमारी स्टडीज से, तो हमने बहुत पढ़ा, सबने अच्छी डिग्रियां ली हैं। वो कभी हमारे लिए सैर के प्रोग्राम बनाती थी, बहुत फन लविंग थी। कभी मूवीज पे हम इकट्ठे जाते थे, कभी ईट आउट के लिए जाते थे। उनको जिंदगी में कम टाइम मिला, मगर उन्होंने बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारी है, उनको कोई रिग्रेट नहीं होगा। बड़ी शान से जिए, हमेशा उन्होंने लेटेस्ट कपड़े पहने, खुद को अपडेट रखती थी। कभी पैसे की उन्होंने परवाह नहीं की थी, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट ब्रांड नेम, लेटेस्ट फैशन। वो बोले जा रहा था और मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे। हाय रे गाफिल, तुझे क्या पता कि जिसको तू सोच रहा है कि वो शान से जी थी, कुछ देर में ही वो बड़े पछतावे का सबब बनने वाली होगी। वो जिंदगी जिसको तू सोच रहा है कि वो भरपूर जिंदगी जी, वो जिंदगी अब हसरत बनने वाली होगी। वो जिसको तू समझता है कि जबरदस्त जीना था, वो तेरी वालदा के लिए कितना बड़ा खसारा बन जाएगा। और इसके ऊपर ये कि वो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ गई हैं जो उनके लिए दुआ मांगनी भी नहीं जानती। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि उनको अब तेरे फूलों की चादरों की जरूरत नहीं है, उनको तेरी दुआओं की जरूरत है। उनको अब अप टू डेट होने के लेबल की जरूरत नहीं है, उनको उनकी नेकियों के गवाहों की जरूरत है। उनको अब तेरी डिग्रियों को की जरूरत नहीं, उनको अब तेरी भेजी भी नेकियों की जरूरत है। मैं दिल ही दिल में ये बातें सोचता जा रहा था, अगर कैसे इसको समझाऊं। इंसान अपनी जिंदगी में यही चाहता है कि उसकी औलाद सबसे ऊंचे ओहदे पर फाइज हो जाए, सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर ले, सबसे आलीशान बंगले में रहे और गाड़ियों की लंबी कतार उसके घर में हो। ख्वा औलाद के पास ईमान की दौलत हो ना हो, ख्वा उसके पास नमाज की कुंजी हो ना हो, ख्वा उसको रब की पहचान हो ना हो, आज इस माँ को ऐसी औलाद और ऐसी दोस्तों का क्या फायदा होगा। ये औलाद और ये दोस्त उसकी जिंदगी में तो उसके लिए फखर का बायस हो सकते थे, मगर मरते ही ये सबसे बड़ी हसरत बन जाते हैं। ये दुनिया में ऐसी दोस्तियां स्टेटस सिंबल बन सकती हैं कि मेरी तो फुलां से दोस्ती है, मगर मरते ही ये सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होती। जिस औलाद की डिग्रियों को माँ बड़ी चीज समझती थी और उस पे फखर करती होगी, आज वो डिग्रियां इस माँ के कोई काम की नहीं। आज इसकी औलाद को दीन की समझ होती तो ये माँ के लिए दुआओं के तोहफे बेचते, खुद इसके लिए जनाजा पढ़ते, नेकियों के गुलदस्ते भेजते और इसके लिए कभी ना खत्म होने वाली नेकी का सिलसिला बन जाते, यानी सदकाए जारिया। इसका अपना अमालनामा तो बंद हो चुका, मगर इसकी नेक औलाद इसकी नेकी बढ़ाती रहती। लड़का हैरान खड़ा मुझे देख रहा था, मेरी तवील खामोशी को वो भांप चुका था। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहे बगैर वो अपने खानदान वालों की तरफ चला गया। आह, इंसान की आंख बंद होते ही उसकी प्रायोरिटीज कैसे बदल जाती हैं। वो सब कुछ जो इस औरत के लिए अहम तरीन था वो जीरो हो चुका है, और जिसको इसने जीरो करके जिंदगी गुजारी वो इस वक्त टॉप पे आ चुका है। मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इनको अपनी माँ के लिए सदका जारिया बना दे। ये थी आज की किस्त। अल्लाह ताला इन बातों से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। उनकी ऐसी तरबियत हमें करने की तौफीक अता फरमाए कि वो हमारे लिए बाकी रहने वाली नेकी बन जाए। इंशाअल्लाह ताला आज रात आपके साथ 12:30 पे दोबारा मुलाकात होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।